30 दिन तक बड़े जोर शोर नाल टाकरा हुंदा रहा। इस लड़ाई विच पेंदे खां दे कन्न विच तीर लगन नाल ओ मारिया गया। दीना बेग मैदान छड़ के नठ गया। सिंघां ने रोपड़ तक उसका पिछा किया। इस जंग विच साहबजादा अजीत सिंह गुरु जी के वड्डे सपुत्र ने बहुत बहादुरी विखाई। केसरी चंद भी इस लड़ाई विच मारिया गया। इस लड़ाई विच आनंदपुर के किले का दरवाजा तोड़न लई पहाड़ी राजिया ने एक मस्त हाथी फौज के अगे किया। गुरु जी ने एक दुनी चंद नामे खत्री सिख नूं हुकम किया कि वह अगे वध के हाथी नाल टाकरा करे ते उसनूं अगे वधन तों रोके। पर वह रात दे हनेरे विच किले की दीवार टप के नस गया। फिर गुरु जी ने भाई बचित्र सिंह जी नूं अगे किया जो पहला एक लुबाणा कौम विचों सी ते जिसने खालसा धर्म धारण कर लिया सी। बचित्र सिंह ने बड़ी दलेरी ते बहादुरी नाल गुरु जी की असीस सदका अगे वध के हाथी का टाकरा किया ते उसनूं जख्मी करके पछाड़ दिता। इस उदाहरण नाल उस वेले दे ब्राह्मण खत्रियां ते गुरु जी दे सिंघां विचला फर्क साफ स्पष्ट हो जाता है। जो जात दे खत्री सन वह कितने गिर चुके सन ते नीवें हो चुके सन, जिन्हां नूं गुरु जी खत्री बनाउणा चाहुंदे सन ते वह की सन। इस जित पिछों गुरु गोबिंद सिंह जी आनंदपुर तों कूच करके कीरतपुर चले गए ते एक उच्ची थां ते जा टिके। पहाड़ी राजिआं ने इन हारां तों काफ़ी शर्मशार होकर सूबा सरहद की फिर मिन्नत की ते 20,000 रुपया नगद दिता। एक रवायत अनुसार भीम चंद ने अपने खानदान विच्चों एक डोला मुसलमानां नूं पेश करके गुरु जी ते हमला करन लई फिर तैयार किया। इन्ने समय विच गुरु जी ने भी कुछ फौजी तैयारी की ते 3-4 किले भी बनवाए जो लोड़ वेले काम आ सकण। गुरु जी नूं शहनशाह हिंद ते उसकी मुखालफत दे सिट्टियां दा भी ज्ञान सी। जो जानते सन कि ये किले किन्नी कु सहायता कर सकते सन, पर पहाड़ी राजियां दी विरोधता ने उन्हां दियां सारियां व्यवस्थां ते पानी फेर दिता। पहली लड़ाई पिछों जो बार बार उन्हां ते हमले होए उन्हां गुरु जी नूं अपनी हालत ते फौजी ताकत सवारन ते संभालन दा समां ते मौका ही नहीं दिता। सिवाए थोड़े जे सरदारू सिखां दे उन्हां पास होर है ही की सी, आमदनी का कोई वसीला नहीं सी, बाहरों संगतां की आमद रुकी हुई सी, उत्थे रहण वाले सिख खाली पेट बगैर फौजी साजो समान जंग विच लड़दे ते किवें लड़दे। उही सिख गुरु जी नूं नजराने ते भेटा दे के गुरु जी दा हथ वटाउंदे सन। हुण लड़ाइयां दे विच मसरूफ हो गए। गुरु जी ने कुछ पठान भी मुलाजम रखे सन, पर उन्हां दी गिनती इतनी थोड़ी सी कि उन्हां तों कोई विशेष लाभ नहीं सी मिल सकता। आखिर पहाड़ी राजिआं ने सूबा सरहद की फौजी सहायता नाल 17 मगर संमत 1755 नूं कीरतपुर ते हमला किया। गुरु जी ने बड़ी बहादुरी ते दलेरी नाल टाकरा किया, पर एडी वड्डी गिनती की फौज नाल खुले मैदान विच टक्कर लैणी बहुत मुश्किल सी। इस करके गुरु जी आनंदपुर के किले विच वापस आ गए। गुरु जी नाल फिर भी काफ़ी श्रद्धावान सिख भाई जोगा सिंह वर्गे सन। जोगा सिंह इस लड़ाई की तैयारी समय पेशावर विच अपनी शादी अधूरी छड़ के गुरु जी पास आ गया से। लड़ाई की तैयारी समय जोगा सिंह दे विआह दा मुहूर्त आ गया। वह गुरु जी कोलों आग्या लैके पेशावर गया। जब उसकी शादी हो रही सी उसे वक्त गुरु जी ने हुक्मनामा भेजा कि वह फौरन चला आवे। गुरु जी का हुक्म मिलते सार शादी की रस्म अधूरी छड़ के जोगा सिंह उस समय तुर पिया ते अपने प्रण नूं पूरा किया। उन्हां दे पिता जी ते होर परिवार ते रिश्तेदार भावें उन्हां नूं रोकना चाहुंदे सन, पर उसने किसी दी भी बचन वाल कोई ध्यान ना दिता ते उतों फौरन तुर पिया ते प्रण निभाया। कुछ दिन घेरा जारी रहा। ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਜਾ ਸੋਹਲੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਜਾਂ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਦਲੇਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਜਾਂ ਢਿਲਾਈ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹੌਸਲੇ, ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬਾ ਇਤਨਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਹੀ ਵਧਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟੇ ਰਹੇ। ਰਾਜਾ ਸੋਹਲੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਭੰਬੋਰ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਬਿਤਾ ਕੇ ਰਵਾਲਸਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੋਹਰ ਸੇਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਬਣਵਾਇਆ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਕੁਝ ਭੇਟਾਂ ਅਤੇ ਤੋਹਫੇ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਰਵਾਲਸਰ ਆਏ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਲਮੋਟਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਬੇਪੱਤੀ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਨਰਾਦਰੀ ਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਰਾਜਾ ਕਲਮੋਟਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮਹੰਤ ਜਵਾਲਾ 500 ਆਦਮੀ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜਾ। ਇਸ ਮਹੰਤ ਨੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੜਕਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਰਾਜਾ ਕਲਮੋਟਾ ਨੇ ਹਾਰ ਖਾਧੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਹੰਤ ਦੀ ਖਬਰ ਲਈ ਅਤੇ ਸੋਧ ਸੁਧਾਈ ਕੀਤੀ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਨਿਰਪੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਸਨ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਅਖੀਰਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸਨ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚੁੱਪ ਸਾਧ ਕੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਬੈਠ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਕਿਸ ਨੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ, ਇਹੋ ਇਤਨਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਉਸ ਰਾਜੇ 'ਤੇ ਹੱਲਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ੁਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਤਾੜਨਾ ਕਰਨੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਆਯੋਗ ਪਾਸਦੀ ਹੈ। ਸੰਮਤ 1758 ਦੇ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਆਏ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਅਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਈ। ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਲ੍ਹੇ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਟਿਕਾਣੇ ਦਰ ਟਿਕਾਣੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੰਮਤ 1769 ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਮੇਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਰਹੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਆਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਪਿਆਰਿਆ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਸੀ। पर इतने जोर नाल नहीं सी कीता जितना कि हुण शुरू होया। पहाड़ी राजां नूं तां गुरु जी का यह वादा जाहो जलाल ते शानो शौक शुरू तो ही कंडे वाग चुभदी सी ते इस सच्चे पातशाह दे नां तो बहुत ही सड़दे सन। उन्हां अपनी हस्ती खतरे विच वेख के गुरु जी की हस्ती मिटाउण दा फैसला कीता अते इस लई लक बन लिया। उन्हां मता पकाया कि गुरु जी के विरुद्ध औरंगजेब नूं चुक्किया ते पड़काया जावे अते गुरु जी उपर सांझी फौजी ताकत नाल हमला कीता जावे। ये पक्की सलाह ते फैसला करके एक कास औरंगजेब पास भेजिया जिसने शाही दरबार विच पहुँच के औरंगजेब नूं चुक्किया ते आख्या कि जिहड़े सिखां दे गुरु तेग बहादुर नूं उस कतल कीता सी उसदे पुत्र गोबिंद सिंह ने अपने सिख इकट्ठे करके एक बहुत वड्डी ताकतवर फौज बना ली है ते उहनां दा एक नवां धर्म बना के उह सिखां नूं मुसलमानां नाल लड़ाउण दी पूरी तैयारी कर रहा है। वह खुद भी बादशाह बन बैठा है। वह शाही लिबास पाउंदा है, अपने आप नूं सच्चा पातशाह आखवाउंदा है। इलाके दे सारे डाकू ते लटेरे उसदे खालसा धर्म विच शामिल हो गए हैं, उसदे मरीद भी बन गए हैं। दिनों दिनों दी ताकत वध रही है। जे इस फुट रहे चश्मे नूं हुणे ही ना बंद किया गया तो बादशाह सलामत, फिर यह हड़ बन जाएगा तो इस नूं रोकना कठिन हो जाएगा। भाव जे इस विच कुछ देर लग गई तो उस नूं काबू करना होर औखा हो जाएगा। औरंगजेब इस सब सुन के भड़क उठा तो उस विच मतसबी ते जनूनी खून उबाले खान लगा। उसने सारे पहाड़ी राजां दा गुरु दा विरोधी होना खुशकिस्मती समझी ते गुरु गोबिंद सिंह जी दी हस्ती नूं ही मेटण दा पक्का इरादा कर लिया। अगला हमला औरंगजेब ने बाजीद खां सूबा सरहंद नूं ताकीद दी हुक्म भेजिया कि गुरु जी नूं फड़ के हाजिर दरबार किया जाए। दिल्ली तो अमीर खां 10,000, नजावद खां ते वहीद खां फौजी जरनैल सूबा सरहंद की सहायता लई भेजे। ये फौज मुखी राजा अजमेर चंद दे नाल कली गई ते पहाड़ी राजां दी फौज भी नाल शामिल हो गई। 17 फगन 1769 नूं इस फौज ने आनंदपुर का घेरा कत लिया। गुरु गोबिंद सिंह जी कोल बहुत थोड़ी फौज सी, इसी कारण वह खुले मैदान विच इतनी वड्डी फौज नाल टक्कर नहीं सन लै सकदे, जिस करके वह आनंदपुर तो बाहर ना निकले। 5 दिन बहुत भयानक जंग हुई ते बहुत सारे सिंह शहीद हो गए ते सिंघां ने भी वैरियां दा बहुत नुकसान किया। 6वें दिन गुरु जी ने किले विचों बाहर आके बड़े जोर दा हमला किया ते सरदार आजीम खां एक नामी सिपा सलार ते पाइंदे खां नूं गुरु जी ने अपने हत्थी लड़ाई विच मारिया। हरिचंद जसवालिया गुरु गोबिंद सिंह जी दे एक मुलाजम मामू खां दे हत्थों मारिया गया। राजा अजमेर चंद जख्मी होया ते आखर शाही फौज नूं हार होई। सिखां ने शाही फौज दा रोपड़ तक पिछा कीता ते आखर जित गुरु जी दी होई। इन्हां हमलियां तो बार बार हार के चिड़ के औरंगजेब ने अपनी हेठी समझी ते उसने गुरु जी दे विरुद्ध एक बहुत वड्डी फौज भेजण दा फैसला कर लिया। सूबा लाहौर ते सूबा कश्मीर नूं भी फरमान भेजे गए कि वह सूबा सरहंद नाल मिलके गुरु जी नूं जंग दे मैदान विच पछाड़न ते जिउंदा गिरफ्तार करके उस अगे पेश करन। जरा वेखो ते सही, एक नुकरे भगती करन वाले फकीर दरवेश दी दलेरी, उहदी बहादुरी ते हिम्मत, सारे भारत का उत्तरी हिस्सा उसके विरुद्ध जंग कर लई निकलिया होवे। आखर बड़ी वड्डी फौज सूबा दिल्ली सरहंद लाहौर ते कश्मीर दी मिलवी फौज गुरु जी के विरुद्ध कूच करके आई। दिल्ली तो जफर बेग, लाहौर तो दिलावर खां ते सफदर खां मैदाने जंग विच आए। गुरु जी ने टिड्डी दल फौज की चढ़ाई की खबर पुजी तो उन्होंने भी अपने सिंघां नूं एक मुठ होण लई वंगारिया ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 10,000 ਸਿੰਘ ਇਸ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ। ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਲ੍ਹਾ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ 2,000 ਫੌਜ ਰੱਖੀ। ਮਾਹਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 1,000 ਸਮੇਤ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 3,000 ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ ਦਮਦਮੇ 'ਤੇ ਟਿਕਾਇਆ। ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਗਮਪੁਰ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੰਡ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਭਾਸਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਟਾਕਰਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।